पृष्ठ संख्या 69, 26 टुकड़ा। गतपरण और चक्रधार रचनाओं को छोड़कर अन्य पूर्ण संकल्पित रचनाओं को सर्वसाधारणतः टुकड़ा के नाम से संबोधित किया जाता है। परण दीर्घ पल्ले की रचना होती है। पहले इस प्रकार का एकाध परण का भाग या टुकड़ा सात संगत के दौरान अचूकता के साथ बजाकर संगीतकार सम पर आया करते थे, जिससे अच्छा परिणाम साध लिया जाता था। ऐसे भाग को टुकड़ा कहने का रिवाज शुरू हुआ होगा। टुकड़ा का मतलब है परन का टुकड़ा। आगे चलकर परन का विशेषण लुप्त हो गया होगा। कालांतर में टुकड़ा शब्द को व्यापक अर्थ प्राप्त होता गया और विस्तारक्षम रचनाओं को छोड़कर सभी पूर्ण संकल्पित रचनाओं को व्यापक अर्थ में गत टुकड़ा कहा जाने लगा। टुकड़ा तिहाई युक्त या तिहाई विहीन हो सकता है। वह दो या तीन आवर्तनों की अपेक्षा ज्यादा लंबा न हो। 27वां है ठेका। ठेका ठेका याने सुनिश्चित, सुनियोजित और मान्यता प्राप्त तबला पखावज पर किए गए आघातों से निर्मित शब्दों, अक्षरों की ताल स्वरूप को व्यक्त करने वाली शुद्ध रचना कृति है। 28 ड्योढ़ी पारिभाषिक शब्द क्रमांक 5 देखिए। ताल ताल गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों संगीत प्रकारों की रचनाओं को स्थिरता से स्थापित करने के लिए सशब्द ताली और निःशब्द खाली, क्रिया और उंगलियों से मात्राएं गिनने की क्रियाओं द्वारा निर्मित सर्वमान्य सुनिश्चित खंडबद्ध एक कावर्तनीय काल रचना को ताल कहते हैं। 30 है ताली खाली। ताल के आवर्तन के चुने हुए खंडों की पहली मात्रा को ताली सशब्द क्रिया से व्यक्त किया जाता है और अन्य खंडों की पहली मात्रा को खाली निःशब्द से व्यक्त किया जाता है। ताल व्यक्त करते समय जिस स्थान पर ताली बजाई जाती है उसे ताली स्थान कहते हैं और जिस सशब्द क्रिया से वह स्थान दर्शाया जाता है उसे ताली क्रिया कहते हैं। खाली क्रिया को हाथ को दूर हटाकर व्यक्त करने की प्रथा है। ताल में क्रिया खाली क्रिया दो बार लगातार नहीं आ सकती, किंतु ताली क्रिया आ सकती है। 31 तालीम। तालीम का सामान्य अर्थ है मेहनत, रियाज, किंतु संगीत में गुरु के योग्य मार्गदर्शन द्वारा ठीक तरह से समझ कर किए जाने वाले रियाज को तालीम कहा जाता है। किसी समर्थ गुरु का शिष्य जब अपनी कला का विधिवत एवं अनुशासनबद्ध प्रस्तुतिकरण कर रहा हो तब उसके प्रस्तुतिकरण में उसके गुरु की तालीम का एहसास होता है। ऐसी तालीम न पाए हुए कलाकार का प्रस्तुतिकरण शिथिल रहता है तथा ऐसे वादन को घड़ंत या उटपटांग कहकर संबोधित किया जाता है। 32 है तिहाई। विशेष शब्दाक्षरों की एक ही रचना समान विश्रांति काल के साथ तीन बार बजाकर जब सम पर आ जाती है तब उसे तिहाई कहते हैं। इस रचना का अंतिम अक्षर सर्व सामान्यतया ठेके के सम का अक्षर होता है और ऐसा होने पर ही वह तिहाई बहुत ही प्रभावकारी होती है, अर्थात अनाघात, अनागत या अतीत प्रकार की रचनाओं में अगर तिहाई हो तो उस तिहाई का अंतिम अक्षर सम पर नहीं आता। कभी कभी गायक या वादक ऐसी तिहाई का प्रयोग एक इस ढंग से करता है कि तिहाई जिस मात्रा पर समाप्त होती है उसके तुरंत बाद बंदिश का मुखड़ा शुरू होता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि तिहाई का हर सम से संबंध होगा ही, सो बात नहीं। इसीलिए जो रचना समान विश्रांति काल लेकर तीन बार बजाकर अर्थपूर्ण उद्देश्य से पूर्व नियोजित मात्रा पर आकर समाप्त होती है उसे तिहाई कहा जाता है। तिहाई में दो विश्रांति काल होते हैं, उसे दम कहा जाता है। यह दम विश्रांति काल जब बहुत कम रखा होता है अथवा लगभग नहीं होता है तब ऐसी तिहाई रचना को बेदम तिहाई कहते हैं। भारतीय संस्कृति में तीन की संख्या को विशेष महत्व प्राप्त है। उदाहरण, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन देवता मंदिर के तीन प्रदक्षिणाएं, त्रिलोक, त्रिवार, सत्य इत्यादि, संभवतः तीन की संख्या से प्रभावित होकर संगीतकारों ने भी संगीत के प्रस्तुतिकरण में तिहाई को महत्व प्रदान किया है। फलतः तिहाई की संकल्पना संगीत में पूर्णतया रूढ़ हो गई है। 32. दमखम का बजाना। जब किसी कलाकार का तबला वादन बिना थकावट के अत्यंत सशक्त के साथ प्रभावी ढंग से होता है तब ऐसे प्रस्तुतिकरण को दमखम का बजाना कहते हैं। अच्छे पौष्टिक आहार, सख्त तालीम और चिल्ला पद्धति के रियाज के फलस्वरूप उंगलियों को अद्वितीय कौशल, ताकत, चिमड़पन प्राप्त होता है। फलतः मुश्किल अक्षरों का दीर्घ काल तक प्रस्तुतिकरण करने पर भी कलाकार का हाथ नहीं थकता। ऐसी अवस्था उस कलाकार को प्राप्त होती है। 34. दर्जा। तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में जब सुयोग्य रीति से सीढ़ी दर सीढ़ी और अनुशासनबद्धता के साथ लय के गुणित किए जाते हैं तब लय की उन बदलती सीढ़ियों को दर्जा कहते हैं। दर्जा करने की यह क्रिया धीमी लय से गुजरकर द्रुत लय की तरफ यात्रा करती जाती है। 35. दोहरा। निश्चित सूत्र से बंधे हुए कायदे के पहले पलटे को दोहरा कहते हैं। कायदे की रचना पहले दो भागों में विभाजित की जाती है और पहली आधी रचना को दो बार बजाकर फिर पूरा कायदा उससे जोड़ा जाता है और इस रीति से प्रस्तुत किए गए पहले पलटे को दोहरा कहते हैं। अर्थात यह कहना जरूरी नहीं है कि दोहरा अन्य पलटों की ही तरह खाली भरी के तत्व के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाता है। स्वतंत्र तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में कलाकार ने कायदे का दोहरा न बजाकर अन्य पलटे बजाएं तो ऐसा माना जाता है कि उस कलाकार को उचित तालीम प्राप्त नहीं हुई है। 36. है निकास। तबले पर उंगलियों एवं हाथ के आघात से अक्षर निकाले जाते हैं किंतु तबले पर एवं बाएं पर भिन्न भिन्न उंगलियों से अलग अलग भागों पर किए गए आघातों से स्वरमय एवं प्रभावी शब्द नादों की निर्मिति होती है। इन सिद्ध विकसित एवं स्वीकृत हस्त क्रियाओं की शैली को निकास कहते हैं। प्रत्येक घराने की निकास शैली सर्वसाधारणतः स्वतंत्र होती है। निकास अर्थ का ही एक और शब्द संगीत में प्रयुक्त किया होता है, तरीका। अक्षरों की ध्वनि कितनी बड़ी या छोटी हो, किस अक्षर पर बल हो, बाएं पर दबाव घिसाव कैसा हो, प्रस्तुतिकरण की गति क्या हो, वादन में नजाकत लाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विविध तंत्रों को कैसे प्रयुक्त किया जाए, विविध प्रकारों के वादन में उनका अंतर्भाव कैसे किया जाए, भाव निर्मिति किस तंत्र से किस प्रकार की जाए, आदि सब बातें निकास की संकल्पना में अंतर्भूत होती हैं। 37 है नौहक्का, समान विश्रांति काल रखने वाले एकाध रचना सम से आरंभ होकर 9 बार बजकर सम पर आ पहुंचती है, उसे नौहक्का कहा जाता है। नौहक्का तिहाई का एक प्रकार है, यह तिहाई की तिहाई होती है, किंतु तिहाई को मात्र 3 बार बजाने से उसे नौहक्का की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए एक ही रचना को 9 बार बजाते समय उस रचना के 8 विश्रांति कालों का अंतर समान होना आवश्यक है। 38 पट, पट याने गुणित, गुणित लय का होता है। जब लय का विश्रांति काल आधा होता है तब कहते हैं कि लय दुगुनी हो गई, इसी को दुगुन कहते हैं। इसी पद्धति से तिगुन, चौगुन आदि लय की प्रस्तुतियां होती हैं। पड़ाल, 39 है पड़ाल, तबला मृदंग प्रभाकर नाम की मृदंग की एक पुस्तक में यह दोहा दिया गया है। धित 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 धूमकिट आरी में करी अणुद्रुत चाल, पुनि आवे पुनि चल पड़े ताको कहिए पड़ाल। उक्त पुस्तक के लेखक की राय में अत्यंत द्रुत लय में पखावज के शब्दों से बांधी हुई रचना ही पड़ाल है। पंडित नयन घोष के मत में पड़ाल संकल्पना में से परन की संकल्पना की निर्मिति हुई। मृदंगाचार्य भगवान दास की राय में गुरु अक्षरों की पड़ाल रचना अति द्रुत में बजने पर उक्त रचना के शब्दाक्षरों का विकास होते होते उसमें से रेले की निर्मिति हुई होगी। पृष्ठ संख्या 72। 40 है परन, उघट करण नाना लय होय धनाक्षर वर्ण, धमक धमक धधकार गत ताके कहियत परण। परण या परण शब्द पर्ण शब्द से निर्माण हुआ है। परण की संकल्पना तबले में पखावज वादन में से उद्भूत हुई है, किंतु तालांग प्रधान ध्रुपद गायन शैली में उपज अंग से ठेके के बदले जिन बोलों से ताल भरा जाता है उस तालाकार बोल भरनी को परन कहा करते थे। कलाकार में कालांतर में इस संकल्पना में फर्क होता गया। आज बजने वाले परन की व्याख्या इस प्रकार है, वजनदार सशक्त खुले बाज की दीर्घ पल्ले की संबद्ध आकार की प्रमुखतया तिहाई से समाप्त होने वाली अर्थपूर्ण विस्तृत रचना याने परन है। परन किसी भी मात्रा से आरंभ हो सकता है। परन का मतलब है वृक्ष का पत्ता या पल्लव। वृक्ष का पत्ता बीज के डंठल और पत्ते भर फैली हुई नसों से संबद्ध रूप में भासमान होता है। उसी प्रकार परन रचना भी वजनदार संबद्ध शब्दों के जोड़ों से और उनकी पुनरुक्ति से रची हुई होती है। परण शब्द को संस्कृत में पंख के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। पक्षियों के 2 पंख होते हैं, उनका फड़फड़ाना संबद्ध गतिमान एवं सुडौल होता है और परण की चाल उसी प्रकार सुंदर और लयबद्ध होती है। गरुण को संस्कृत में सुपर्ण कहा गया है। परण प्रकार भी गरुण की उड़ान जैसा क्षण में उड़ान भरने वाला दीर्घ पल्ले के आकार का होता है। परन के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला साथ परन, इसे बहुतांश में साथ संगत में बजाया जाता है। दूसरा गत परन, तिहाई विहीन परन को गत परन कहते हैं। यह रचना खाली भरी के तत्व से बजाई जाती है। तीसरा है बोल परन, यह रचना साहित्यिक शब्द, भक्ति भाव, देवताओं की स्तुति आदि गुणों से सजी धजी होती है। इस जाति की रचनाओं में ऐसे संस्कृत एवं हिंदी शब्दों को चुना होता है कि विशिष्ट निकासों से वे शब्द ही वाद्यों से बोलते हुए प्रतीत होते हैं। चौथा है तालपरन, यह रचना चक्रधार जाति की होती है। पृष्ठ संख्या 73। परन रचना में पखावज के धूमकिट, धागे तेटे, तागे तेटे, क्रधा तेटे इत्यादि बोलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आरंभ में उद्धृत किए गए दोहे के अनुसार पखावज के अंग के खुले धा का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। 41 है पल्ला, पल्ला यानी टप्पा। तबले की कुछ रचनाएं 2, 3, 4 जैसी विविध टुकड़ों में विभाजित करके बजाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक विभाग बहुतांश में एकाध वाक्यांश या छोटा विधान होता है, किंतु दूसरे टप्पे के विधान का अलगपन देखने के लिए लय का दर्जा बदला हुआ होता है। फलतः ऐसे दो दर्जों पल्लों की रचना को दुपल्ली, तिपल्लों की रचना को त्रिपल्ली और चार पल्लों की रचना को चौपल्ली कहते हैं। 42 है पेंच, कुछ रचनाओं के विस्तार में शब्द इस रीति से प्रयुक्त होते हैं कि उनका सुलझाव करते समय वादक और श्रोता भी पशुपेश में पड़ जाते हैं। ऐसी जटिल रचना के विस्तार को पेंच कहते हैं, अर्थात गुत्थम गुत्थावली। इस रचना को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया होता है। लगभग इसी अर्थ में गिरह और फंदा शब्दों को भी प्रयुक्त किया जाता है। गिरह यानि गांठ, जो सुलझाने में कठिन हो, और फंदा यानि पहेली, उसे भी हल करना मुश्किल हो। ऐसे बुद्धि प्रधान वादन से चैतन्य निर्माण होता है। 43 पेशकार, ठेके के अक्षरों, खंड तथा रचना से निकटता रखने वाली किम बहुना, उसी में से निर्माण हुई खाली भरी के सूत्र का मुक्त एवं कलात्मक प्रयोग की जाने वाली, प्रधानतः धीमी लय में प्रस्तुत की जाने वाली और विविध शब्द लयाकृति बंधु को जन्म देने वाली स्वरमय, अत्यंत पदयुक्त, अंत्य पदयुक्त विस्तारक्षम रचना को पेशकार कहते हैं। पेशकार वादन प्रकार स्वतंत्र तबला वादन में आलापी की भूमिका अदा करता है। किम बहुना गायन की आलापी के लिए समांतर धीमी लय में आलापी तबले पर प्रस्तुत करने की जिद के परिणाम स्वरूप पेशकार संकल्पना का उदय हुआ हो। हाथ की तैयारी, शीघ्र गतिमानता या जटिल गणित के कौशल की यहाँ अपेक्षा नहीं है, बल्कि ऐसा कौशल पेशकार वादन के अपेक्षित परिणाम को बाधक ही सिद्ध होता है। दिल्ली फरुखाबाद घरानों के पेशकार लोकप्रिय हैं। लखनऊ का पेशकार भी पहले बसता था, किंतु पेशकारों में विशेष वातावरण निर्माण करने का प्रयत्न पहले जमाने में हुआ करता था। इसीलिए कुछ गुणी वादकों ने पेशकार के जहाजी, लाल किला जैसे नाम रखे थे। पृष्ठ संख्या 74। 44 है फरद, लखनऊ बनारस घराने में अद्वितीय स्वरूप के गत प्रकार को फरद कहते हैं। ऐसी रचनाओं में जाति और लय में बदल किए गए होते हैं। यह रचना गतिमान, गति प्रधान होती है तथा वह बजाने में मुश्किल होती है। लयकारी पर प्रभुत्व रखने वाला कलाकार इस प्रभावात्मकता के साथ बजा सकता है। यह रचना अनपेक्षिता से सम पर आती है। पृष्ठ संख्या 74 45 है फर्शबंदी या फर्शबंदी। फारसी भाषा में फर्श यानि नींव यानि बुनियाद, जमीन और बंदी यानि बनाना, इकट्ठा करना। फर्शबंदी का मतलब है जो विस्तारक्षम रचना प्रस्तुत करनी होती है उसकी बुनियाद आरंभ में तालाकृति में तैयार करके उसे खंडबद्ध स्वरूप में श्रोताओं तक पहुंचाना। पहले से ही सोलो वादन त्रिताल में हुआ करता आया है, इसलिए उस ताल में प्रस्तुत की जाने वाली रचनाओं की फर्शबंदी चार मात्राओं के चार संबद्ध खंडों के द्वारा व्यक्त की जाती है। त्रिताल के आत्यंतिक प्रभाव के कारण चार संबद्ध खंडों में रचना को प्रस्तुत करना यानी फर्शबंदी यह विचार स्वीकृत किया गया है। आगे चलकर अन्य तालों में प्रस्तुत किए जाने वाले सोलो वादन में भी रचनाओं को शुरू में चार संबद्ध खंडों के द्वारा पेश करने की प्रथा शुरू हुई है और अब फर्शबंदी का अर्थ है शुरू में चार संबद्ध खंडों में रचना को प्रस्तुत करना। कायदे की दोहरा और वर्तमान फर्शबंदी की संकल्पनाएं बहुतांश में मिलती जुलती हैं। 46 है बंद। तबले पर और अथवा बाएं पर गूंज विहीन नादों से जो शब्दाक्षर बजाए जाते हैं उनको बंद अक्षर कहा जाता है। बंद की संकल्पना खुली संकल्पना के विरुद्ध है। 47 है बढ़ंत या बढ़त। बढ़ंत या बढ़त का अर्थ है विस्तार करना। पलटे करना भी विस्तार ही है। बनारस घराने में पेशकार के बदले जिस चलन का विस्तार किया जाता है उसे बढ़ंत कहते हैं और यह चलन कई बार त्रिताल की मध्य लय के ठेके से नाता दर्शाने वाला होता है। बराबरी 48 है बराबरी। प्रस्तुतिकरण जब मध्य लय में होता है तब उस लय को बराबरी की लय कहने की पद्धति रूट है। 49 है बल। कायदा पेशकारों के पलटों को बल कहते हैं। बल शब्द का व्यवहारिक अर्थ रस्सी की ऐठन भी है, इसलिए कुछ विद्वानों की राय में जिन चुने हुए पलटों में रचनात्मक या निकासात्मक विशेष कौशल महसूस होता है उसी को बल कहते हैं। पृष्ठ संख्या 75। 50 है बांट। लग्गी के पलटों को बांट कहते हैं। लग्गी में बहुत ही कम अक्षरों का अंतर्भाव होने से उसके पलटे यानि शब्द उलट उलट कर फिरा कर प्रस्तुत किए जाते हैं, इस क्रिया को बांट कहते हैं। बांट की संकल्पना में खाली भरी के तत्व का प्रभावी ढंग से मुक्त प्रयोग किया जाता है। 51 है बोल। बोल यानि शब्द। कविता में जो शब्द आते हैं उन्हें हम कविता के बोल कहते हैं। उसी प्रकार तबले की रचना में जो शब्द आते हैं उन्हें भी हम बोल कहते हैं। ठेके के शुद्ध स्वरूप अक्षरों को भी ठेके के बोल कहा जाता है। गायन वादन और नृत्य में भी बोल शब्द प्रचलित है। 52 है मात्रा। ताल गिनने के एकक को मात्रा कहते हैं। संगीत का काल नापने का एकक ताल है। गायन वादन को हम ताल के मापक में सुनते हैं, मात्रा के नहीं। छंद शास्त्र में लघु अक्षर के काल को एक मात्रा कहते हैं और गुरु यानी दो लघु अर्थात दो मात्राओं का काल। 53 है मुखड़ा। सम से या सम के बाद आरंभ होकर सम पर आकर पढ़ने वाली छोटी रचना को मुखड़ा कहते हैं। मुखड़े की लंबाई बहुतांश में एक आवर्तन से होती छोटी होती है। कभी कभी यह लंबाई एक आवर्तन की भी होती है। कई बार मुखड़ा तिहाई से सम पर आता है। 54 मोहरा। सात संगत में अथवा सोलो वादन में ठेका शुरू करने से पहले एक छोटी सी आकर्षक रचना बजाकर जब ठेका पकड़ा जाता है तब उस रचना को मोहरा कहते हैं। प्राचीन काल में मोहर शब्द का एक सोने का सिक्का चलन में था। यहाँ सुंदर वजनदार शब्दों से बना हुआ सोने जैसा मौल्यवान सम पर आने वाला छोटा सा टुकड़ा यानी मोहरा को स्पष्टीकरण भी किया गया है। कुछ तबले की किताब में मोहरा की व्याख्याएं की गई हैं। मोहरा यानी मुहर लगाना अर्थात टिकट लगाकर लिफाफा बंद करना। लेकिन मेरी राय में मोहरे की यह व्याख्या खींचतान कर की गई है। कुछ वादकों के अनुसार बिना तिहाई के मोहरा हो ही नहीं सकता। संख्या 76 मुखड़ा और मोहरा की तुलना। मोहरा तिहाई सह होता है, मुखड़ा तिहाई सहित होता है। मोहरा नाजुक बोलों से प्रस्तुत किया जाता है। मुखड़ा मोहरे की तुलना में जोरदार शब्दों का बना होता है। मोहरा उत्स्फूर्त रूप में बजाया जाता है। मुखड़ा बजी हुई रचना होती है। मोहरा एक आवर्तन की अपेक्षा निश्चय ही छोटा होता है। मुखड़ा एक आवर्तन या कंचित दो आवर्तनों के पल्लों का भी होता है, किंतु दो आवर्तनों वाले मुखड़े को टुकड़ा कहना अधिक उचित होगा। मुख प्लस रा बराबर मुखड़ा और मुह प्लस रा बराबर मुहरा। संक्षेप में दोनों का अर्थ एक ही है और वह है छोटे आकार का सम पर आने वाला तिहाई विहीन या तिहाई युक्त आकर्षक टुकड़ा। मुख यानि चेहरा और संपूर्ण शरीर यानि ताल का ठेका। मुख शरीर का एक भाग है जो निसंदेह संपूर्ण शरीर के आकार की अपेक्षा छोटा होता है। और अगर मुखड़ा और मोहरा दोनों शब्द मुख के आधार पर निर्माण हुए हैं तो मुखड़ा अथवा मोहरा संपूर्ण ताल ठेके के आकार की अपेक्षा छोटा होना अत्यंत स्वाभाविक एवं उचित है। इसीलिए मुखड़ा मोहरा रचनाएं ताल ठेके के आकार की अपेक्षा छोटी होनी चाहिए। 55 है मैदान। तबले की पूरी पर की स्याही और किनार के बीच के स्थान को मैदान कहते हैं। 56 है रंग या रंग भरना। रंग भरना यानी एक विशिष्ट तंत्र से शैली से या चमत्कृति से रचना के प्रस्तुतिकरण में चैतन्य निर्माण करना। रचना कृति को बार बार बदल करके कलात्मक ढंग से जब रचना प्रस्तुत की जाती है तब उस क्रिया को रंग भरना कहते हैं। उस्ताद थिरकवा साहब पेशकार वादन के बाद एक छोटा सा चलन प्रस्तुत किया करते थे जो इस प्रकार है। धींग धाग धा धींग धाग धा तीन ताकता धींग धाग धा। पृष्ठ संख्या 77। इस रचना के विस्तार में उस्ताद थिरकवा बार बार उक्त रचना कृति में अलग अलग शब्दों एवं गुणितों की योजना करके एक आनंददायक चैतन्य निर्माण किया करते थे। पंडित नारायण जोशी जी ने अपनी आदिताल पुस्तक में इस रचना और उसकी विस्तार क्रिया को पेशकार रंग कहा है। 57 है रेला। पूरक चक्र गतिशील और शीघ्र गतिक्षम शब्दों की और खाली भरी के तत्व से बनी हुई तथा ताल से नाता रखने वाली विस्तारक्षम रचना को रेला कहते हैं। सर्वसाधारणतः रेले में सहायक कारक स्वरमय अंत्य पद नहीं होता। कायदापूर्ण वाक्य विचार है तो रेला एक सूत्र रूप विचार वचन होता है। रौ 58 है। रौ एक तरह का रेले का ही प्रकार है। रेला कायदे की तरह एक गुना दो गुना चौगुना गुणितों में बजाया जाता है किंतु रौ में गुणित नहीं होता। रौ वादन प्रकार चलन के रूप में एक बुनियाद या ढांचा होता है। इस चलन के महत्वपूर्ण आघात अक्षरों को वैसा ही रखकर बीच में तिरकिट धीनागिन दिद दिद दिन दिन इत्यादि अनुरूप शब्दाक्षरों का आरोपण करके जब वह चलन प्रस्तुत किया जाता है तब हमें रेले का आभास होता है। किंतु रेले जितनी ही तैयारी में बजने पर भी मूल चलन पहली ही लय में यानी एक गुना लय में चलने की भी प्रतीति होती रहती है। अजराणा और फरुखाबाद घराने में रौ वादन प्रकार का कलात्मकता के साथ अधिक इस्तेमाल किया जाता है। 59 लग्गी। लग्गी तबले की सर्वाधिक छोटे आकार की विस्तारक्षम रचना है। गंभीर स्वरूप से के अधिक मात्रा कालों के तालों में कायदा आदि रचनाओं का प्रयोग हुआ करता है परंतु कहरवा दादरा चांचर इत्यादि छोटे आकार के तालों में चंचल प्रकृति की लग्गी का प्रयोग हुआ करता है। लग्गी ठुमरी गजल गीत भजन इत्यादि उपशास्त्रीय गायन तथा सुगम संगीत में बजाई जाती है। लग्गी का चलन तालाकृति जैसा होता है। लग्गी का विस्तार कायदे के पलटों की तरह हुआ करता है किंतु इस विस्तार क्रिया के लिए कायदे के कठोर नियमों का बंधन नहीं होता। लग्गी लड़ी का इस्तेमाल सर्वसाधारणतया सोलो वादन में नहीं होता किंतु कुछ अधिकारी वादक वादन के अंत में एकाध वजनदार लग्गी प्रस्तुत करके अत्यंत तैयारी में उसका विस्तार करते हैं और रंग जमाते हैं। पृष्ठ संख्या 78। 60 लड़ी। लड़ी एक प्रकार की गत होती है किंतु उसका उद्गम बहुतांश में कायदे जैसी रचनाओं में से हुआ होता है। लड़ी शब्द में दो अर्थ अभिप्रेत हैं। एक है रेशम की वर्तुलाकार लड़ी जैसी लड़ गत जिसमें ऐठन नहीं होती। यह लड़ी इस प्रकार वर्तुलाकार बांधी हुई होती है कि उस रचना का आरंभ बिंदु और अंत्य बिंदु एक दूसरे में बेमालूम रीति से एक रूप हुए होते हैं। यह वर्तुलाकार रचना पुनः पुनः बजाने पर उसकी सम पहचानना या पकड़ना कठिन होता है। उस्ताद इनाम अली की राय में लड़ शब्द लड़ाई की याद दिलाने वाला वादन प्रकार याने लड़ी है। यहाँ दाएं और बाएं पर बजाए जाने वाले अक्षर इस प्रकार चुने रहते हैं कि मानो वे तबले पर एक दूसरे से लड़ते हुए प्रतीत होते हैं। उपर्युक्त दोनों संकल्पनाएं कल्पनाएं जिसमें समाविष्ट है ऐसी दिल्ली बाज की एक लड़ की रचना नीचे नमूने के तौर पर दी जा रही है। घेगेतिट घेगेतिट गिन धिन धीनागिन तागे तेटे घेगे तेटे घेन धिन धीनागिन धीना धीना गिन धागे तीट किट धीन धीना घेगे तीट गिन धिन ताता केन ताके तीट। साधारणतः गत को गत दो बार बजाई जाती है किंतु लड़ी एक बार बजाने की प्रथा है। बनारस घराने में लग्गी के पलटे को भी लड़ी कहते हैं। 61 लड़ंत या लड़त। कभी कभी सितार वादक, सरोद वादक और तबला वादक अपने सह वादन के प्रस्तुतिकरण में वादन कौशल के माध्यम से कृत्रिम लड़ाई खेला करते हैं। यह लड़ाई गणित एवं लयकारी के माध्यम से कलापूर्ण रीति से हुआ करती है, अर्थात इस वादन के दौरान ताल की आवर्तन क्रिया और लय में जरा भी बदल नहीं हुआ करता। ऐसे प्रस्तुतिकरण के लिए कलाकार में हाजिर जवाबी, सतर्कता एवं तत्काल नवनिर्मिति क्षमता के गुण विद्यमान हों, तभी यह लड़त या लड़ाई श्रवणीय होती है। पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा के संयुक्त वादन में आकर्षक लड़त का आनंद श्रोताओं को प्राप्त होता है। 62 लय। आघात से किए गए काल विभाजन के संबद्ध वेग को लय कहते हैं। दो आघातों के बीच में विद्यमान विश्रांति काल लय की निर्मिति किया करता है। 63 पृष्ठ संख्या 79 लोम विलोम। एकाध बोल रचना में शब्द इस तरह बांधे हुए होते हैं कि उस रचना को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पढ़ा जाए तो भी उस रचना का मूल रूप वही रहता है। ऐसी रचना को लोम विलोम कहते हैं। 64 लौट पलौट। किन्हीं छोटे शब्द समूह के शब्दों को कलात्मक रीति से उलट पुलट कर किए गए विस्तार को लौट पलौट कहते हैं। 65 है सम। ताल ठेके के आवर्तन के आरंभ बिंदु को सम कहते हैं। सम ठेके के केंद्र बिंदु भी होती है।